हेलो रश्मि, वेलकम बैक। कैसे हो?
गुड गुड गुड, आप कैसे हो?
मैं बिल्कुल बढ़िया। आपकी बुक दिखा देता हूँ, हिंदू इन ऑक्सफोर्ड। तो ये हिंदू क्यों है भाई ऑक्सफोर्ड में? क्या ऐसा सेक्युलर टॉपिक नहीं रख सकते थे, स्टूडेंट इन ऑक्सफोर्ड? ये हिंदू कहाँ से आया?
उन्होंने कहा कि ऑक्सफोर्ड इज नॉट रेडी फॉर अ हिंदू प्रेसिडेंट, सो दिस वाज अ स्टेटमेंट बाय अ हिस्ट्री फैकल्टी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। So when they picked it up, how can we not own it?
अच्छा, तो आप जब प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए स्टूडेंट बॉडी के लिए, तो उन्होंने बोला कि मतलब ऑक्सफोर्ड अभी रेडी नहीं है स्टेट मतलब प्रेसिडेंट के लिए।
नहीं,
हिंदू प्रेसिडेंट के लिए
बात बहुत बड़ी है।
बताओ, तो शुरू से बताओ, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है ये कहानी।
तो मैं उड़पी से आती हूँ। उड़पी एक छोटा सा शहर है कर्नाटका में, वहीं पे पली बड़ी हूँ। ऐसा नहीं है कि माँ बाप वहाँ से हैं और हम पले बड़े किसी बड़े शहर में। 21-22 साल तक वहीं रहे, फिर 21 साल में लगा कि किसी बड़े यूनिवर्सिटी से जाके पढ़ते हैं, तो हमने सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी चुना जो रैंक 1 है इन द वर्ल्ड। ऐसे एप्लीकेशन लगा दिया। एप्लीकेशन लगाते वक्त तो ऐसे कोई चाचा मामा भी नहीं था जिससे हम पूछ सके कि मामा हमने ठीक से भरा तो है। हम कर लेते हैं ना नॉर्मली एप्लीकेशन, किसी कज़न से दिखा देते हैं। अपने मेरे तो दूर दूर के किसी सर्कल में भी कोई नहीं था जिसका ऑक्सफोर्ड की कोई डिग्री हो या गया हो। ऐसे भर के छोड़ दिया और उन्होंने हमें एक्सेप्ट कर दिया। तो फिर हम चले गए कैंपस पे, तो हमें बहुत जोश था कि चलो, हमें पता नहीं था फिर भी हम यहाँ तक पहुँच गए। आई थिंक रेकलेस ऑप्टिमिज्म बहुत ही बड़ा रोल रहा है ज़िंदगी में। ड्रीम विदाउट एनी बाउंड्स एंड जस्ट थिंक दैट एनी थिंग इज़ पॉसिबल। तो उस एटीट्यूड से हम गए। 3 महीने में हमने देखा कि चुनाव है छात्र संघ का, तो वहाँ छात्र संघ बहुत ही ऐसे प्रेस्टिजियस माना जाता है। सारे छात्र संघ अध्यक्ष बड़े जाके,
कितनी जबरदस्त संस्कृत निष्ठ हिंदी बोल रहे हो
और हम कर्नाटका से हैं, ये एक मिथ है।
मेरे से बेहतर अंग्रेजी बोल रहे हो
हिंदी
हिंदी सॉरी
तो फिर हम गए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। 3 महीने हो गए छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। मतलब उससे पहले हमने देखा कितना मतलब प्रेस्टीजियस है, लोग जो लड़ते हैं बहुत बड़े मतलब लीडर्स बन जाते हैं सोसाइटी में, चेंज मेकर्स होते हैं। तो एक लेगेसी है एसोसिएटेड इस पद के साथ। तो हमने सोच लिया कि चलो देखा जाता है। और हमने एक ये भी नोटिस किया था कि कोई भारतीय मूल का कोई छात्र संघ अध्यक्ष नहीं रहा है ऑक्सफोर्ड में, जबकि ऑक्सफोर्ड 1000 साल पुराना यूनिवर्सिटी है विच इज़ क्वाइट प्रेस्टीजियस। वहाँ पे भारत के आई थिंक 2 पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ से पढ़े हैं। इंदिरा गांधी जी गई थी, उन्होंने शी ड्रॉप्ड आउट अनफॉर्चुनेटली, शी नेवर ग्रेजुएटेड ऑक्सफोर्ड, बट मनमोहन सिंह जी की डिग्री है वहाँ से, सो ही ग्रेजुएटेड विद ऑनर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। हम देखते हैं कि बहुत सारे जो प्रेस्टीजियस लोग हैं भारत में हिस्टोरिकली भी करेंटली भी, जो इम्पोर्टेंट पोजिशंस वील्ड करते हैं पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट में या मीडिया में, उनका ऑक्सफोर्ड से कुछ ना कुछ ताल्लुकात रहा है। बट किसी ने भी एक छात्र संघ की अध्यक्षता की चुनाव कभी उन्होंने लड़ा नहीं, जबकि ये वहाँ का सबसे क्या कहते हैं हाईलाइट है। तो हमने सोचा कि चलो हम
यू वुड थिंक कि इंदिरा गांधी तो लड़ेगी मतलब सीरियसली,
यू वुड आई थिंक वन वुड, बेनजीर भुट्टो लड़ी थी।
अच्छा,
और
बट नहीं जीती,
नहीं जीती है। अच्छा। यूनियन प्रेसिडेंट रही है वो,
तो यू आर इन सेम लीग एज बेनजीर भुट्टो।
वो यूनियन की प्रेसिडेंट रही है। यूनियन इज अ डिबेटिंग सोसाइटी, हम स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट है, कुछ तो प्रेसिडेंट थी वो, तो लीडरशिप पोजिशन में थी वो। तो आई एम इन अ स्लाइटली डिफरेंट लीग, नॉट अ डिबेटिंग क्लब बट द एंटायर स्टूडेंट यूनियन ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो फिर देन आई फॉट द इलेक्शन, एंड मेरा तो बस यही था कि चलो अभी हम फाइट करेंगे तो 10 साल बाद शायद कोई भारतीय बन जाएगा। इट्स जस्ट अबाउट क्रिएटिंग अ पैराडाइम शिफ्ट, स्टार्टिंग दैट कॉन्वर्जेशन कि हमारे लोग भी लड़ सकते हैं। बस वो ऐसे वाला था कि सिम्बॉलिक कैंडिडेचर कर लेते हैं। पर मैंने अच्छे से कैंपेन तैयारी की थी, हम तैयारी के साथ ही जाते हैं जहाँ भी जाते हैं, तैयारी अच्छी करी। मेरे जो ऑपोजिट थे सारे यूरोपियन थे, देवर ऑल मेल, देवर ऑल मैन, यूरोपियन वाइट, यूरोप के, तो वैसे यार इनके सामने क्या ही जीतना, ये 3-4 साल से कैंपस में थे, अपनी अंडरग्रेड से लेके मास्टर से लेके पीएचडी तक कर रहे थे वहाँ पे, तो मुझसे तो बहुत पहले पहुँच गए थे यूनिवर्सिटी, मैं बस 3 महीने पहले पहुँची थी, और मुझे कौन ही देगा वोट। लोगों ने तो मजाक ही उड़ा दिया था कि अरे रश्मि तुम्हें तो एक ही वोट मिलेगा जो तुम अपने आप को दोगी तो ये वाली बात हो गई थी। फिर चुनाव हुआ, एंड आई थिंक इफ़ यू प्रिपेयर वेल एंड यू इफ़ यू हैव दैट पॉजिटिव एटीट्यूड, कैन डू एटीट्यूड, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैं जीती, एंड मज़े की बात यह है कि इट वॉज़ अ वेरी हिस्टोरिक इलेक्शन, सबसे बड़ा वोटर टर्नआउट था, आज तक इतने लोग आए नहीं थे चुनाव में मतलब वोट देने, बिगेस्ट वोटर टर्नआउट था।
क्या किया था ऐसा?
देखो हम साइंस बैकग्राउंड के थे, साइंस हमने आई लेटर रियलाइज दैट पीपल फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड डोंट इवन कंटेस्ट इलेक्शंस। अच्छा। तो मुझे लगता है वो पूरी जो ये है ना क्या कहते हैं साइलेंट मेजोरिटी पूरी जग गई कि हमें भी कोई
The era of silent majority.
The era of silent majority. तो वही हुआ, एंड इवन द विक्ट्री मार्जिन वाज ह्यूज, 54% ऑफ द वोट्स डायरेक्टली मेरे नाम पे पड़ गए, एंड इट वाज लाइक इसको हिस्टोरिक इलेक्शन माना जाता है, ना पहले ना बाद में ऐसा कोई इतना बड़ा चुनाव रहा होगा। And I won in the very first round with 54% of the votes. And literally it was like, you know, taking all the other candidates to the cleaners. वैसे वाली हार थी उनकी, बहुत बुरी हार थी। ऐसे एक कैंडिडेट को तो शायद ऐसे 20-25 वोट मिले थे, जबकि मेरी तो क्या विक्ट्री मार्जिन ही हजारों में था ऐसे। ऐसे आप देखोगे ना एक मतलब पूरी लैंडस्लाइड ऐसे विक्ट्री हो रही है और बाकी सब ऐसे
मतलब वो जो वोट नहीं डालता था वो
टैप्ड इनटू देम एंड आई टैप्ड इनटू आई थिंक द रियल रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। जब आप लोगों के दिल की बात करते हो ना तो लोग पार्टिसिपेट भी करना चाहते हैं। अभी अगर आप भारत में देखोगे तो बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने आप को रिप्रेजेंटेड फील ही नहीं करते, उनको लगता है कि हमारे मुद्दों की चर्चा हो ही नहीं रही है। तो द आई थिंक द एंटायर मोटिवेशन टू कम आउट एंड वोट इज ऑल्सो वेरी लेस दैट टाइम, क्योंकि आपको लगता है कि हम वोट करें ना करें हमारा तो कुछ नहीं होने वाला है ना।
मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ ये सवाल कि जीते कैसे और इतने हिस्टोरिक मार्जिन से, वो भी पहली बार 3 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ लोग होंगे जो इससे लेसन ले सकते हैं कि भाई ऐसी स्ट्रेटजीज जो हैं ऐसी, क्योंकि दिस शोज कि आप में पॉलिटिकल एक्यूमन बहुत हाई है फॉर योर एज, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, पैट्रोनाइजिंग नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इट्स अ गुड थिंग, तो वो क्या था लाइक यू से कि ये एक चीज़ था कि बहुत सारे लोग जो थे वोट ही नहीं डालते थे, तो मतलब ऐसे क्या इशूज़ आपने उठाए, किस तरीके से उनको रिप्रेजेंटेड फील कराया, और मतलब वहाँ से वहाँ तक लेके जाना कि आप वोट डालें, like that requires a journey
yeah,
तो वो कैसे it does
हुआ? मैंने एक पूरा चैप्टर लिखा है इसके बारे में। When I went to Oxford, I think I tried to feel the pulse of the community. मैंने बस अपना टर्म जिया वहाँ पे 3 महीने, मैं हर जो भी मिक्सर चल रहा था वहाँ पे जाती थी, लोगों से बात करती थी, तो मैंने जाना कि ऑक्सफोर्ड में आज के डेट में ऑल्सो 100 से ज़्यादा देश के लोग आते हैं वहाँ पे, और बहुत लोग हैं जो ग्लोबल साउथ से आते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज से आते हैं, अलग अलग साउथ अमेरिका से आते हैं, एंड देन जब उनसे कॉन्वर्जेशन होता था तो मुझे लगता था कि हमारी कितनी शेयर्ड हिस्ट्री है, कैसे हम सब एक सिविलाइजेशन रहे हैं जो बहुत ही हाईली इवॉल्व रहा है हिस्टोरिकली सिविलाइजेशनली, एंड देन हाउ वी वर सब्जुगेटेड बाई वेस्टर्न फोर्सेस, हाउ वी वर लूटेड, हाउ वी वर कॉलोनाइज्ड, एंड हाउ वी आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दैट। तो हमारी जो एक शेयर्ड हिस्ट्री है, हमने वो एक देखा कि हम सब में वो एक कॉमन थ्रेड था, एंड मैंने ये भी देखा कि ये जो एकेडेमिया है ना, सबसे जो टॉप एकेडेमिया माना जाता है इन द वर्ल्ड, द टॉप 10 यूनिवर्सिटीज, दे हैव ऑल अनफॉर्चुनेटली बिकम सेंटर्स विच प्रोपोगेट वेस्टर्न सुप्रीमेसी। तो यहाँ की जो क्या कहते हैं थ्योरीज होते हैं, इकोनॉमिक हो, ये हो क्या हिस्टोरिक हो, फिलोसॉफिकल हो, इट प्रोपोगेट्स अ लाइन विच मेंटेन्स वेस्टर्न सुप्रीमेसी। तो अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे बाहर से तो यू ओनली स्टडी दैट पार्ट ऑफ ग्लोबल मार्केट फोर्सेस विच फेवर वन सिविलाइजेशन ओवर द अदर। तो हमने वहाँ वी यूज टू हैव दीज यू नो डिनर टाइम कॉन्वर्सेशंस कि यार ऐसे कैसे ये चल रहा है यहाँ पे, दिस इज सपोज टू बी द नंबर वन यूनिवर्सिटी, हाउ आर द कॉन्वर्सेशंस एंड सिलेबस स्टिल सो रिग्रेसिव हियर।
और एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे डीकोलोनियलिज्म जो है, डीकोलोनाइजेशन का काफी एक्सेप्टेंस है, एटलीस्ट एटलीस्ट इन स्पीच.
इन स्पीच. सो आई विल टेल यू, आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. हम डीकोलोनाइजेशन पे डीकोलोनाइजेशन वीक करते हैं, जहाँ पे एक पूरा हफ्ता है जहाँ पे रंग बिरंगे हमने क्या कहते हैं अलग अलग देश के झंडे टांग दिए, अलग अलग देश का खाना हमने सर्व कर दिया. एक तरह से कल्चरल सेलिब्रेशन हो जाता है, डाइवर्सिटी हो, डीकोलोनाइजेशन हो, बट वो सिम्बॉलिज्म के बियॉन्ड जाता नहीं है. आज भी अगर आप सिलेबस देखोगे, आज भी सिलेबस छोड़ो आप, अगर आप हमारे ओरियल स्ट्रीट पे चलोगे तो ओरियल स्ट्रीट पे जो स्टैचू लगा है वो इसका लगा है, अपना कौन है, रोड्स का लगा है, सीसिल रोड्स का,
जो इसके नाम पे स्कॉलरशिप भी है,
जिसके नाम पे सबसे ऑक्सफोर्ड की सबसे प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप भी है. ही वाज अ स्लेव ओनर. उसकी जो रोडेशिया में उसने जो किया है, द काइंड ऑफ एट्रोसिटीज ही इज डन ऑन दोस पीपल, इट इज अनइमेजिनेबल. एंड यू आर टेलिंग मी कि यहाँ का सबसे प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप यही है, सबसे प्रेस्टिजियस इंसान यही है, सबसे प्रेस्टिजियस लोकेशन पे स्टैचू आप इन्हीं का लगाओगे. तो मेंटालिटी तो यही रही ना आपकी, कि आप इसी चीज को ग्लोरीफाई करोगे. और ऐसा नहीं है कि पैसों की कमी है. आज के डेट में इतने सारे अमीर, मतलब ये निकले हैं, अलुमनाई निकले हैं, मरते हैं अपने नाम से वहां पे स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूट करने के लिए, क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड की लेगेसी के साथ जुड़ना चाहते हैं. देर इज आई थिंक अ फुटबॉल प्लेयर, अ बास्केटबॉल प्लेयर दैट आई टॉक अबाउट इन दिस बुक, हु वॉन्टेड टू इंस्टीट्यूट अ स्कॉलरशिप अंडर हिज नेम एंड दे जस्ट रिजेक्टेड इट. तो ऐसा नहीं है कि पैसों की कमी है. उनमें ये इंटेंशन नहीं है कि वो इस लेगेसी को चेंज करे, इस भाव को चेंज करे. दे आर हैप्पी विद डीकोलोनाइजेशन एज लॉन्ग एज इट इज अ, क्या कहते हैं, डीकोलोनाइजेशन वीक.
ये भी एक अच्छा, मतलब ब्रिटिशर्स की बात हो रही है और एक ब्रिटिश यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, तो उनकी स्ट्रेटेजी की भी बात होनी चाहिए. क्योंकि अगर आप सिंबलिज्म कर देते हो तो आपको कुछ असली में कुछ करने की जरूरत नहीं है. इट्स अ सेफ्टी वॉल, जस्ट लाइक कांग्रेस वॉज क्रिएटेड. हाँ, मतलब इस तरीके से, मतलब हर चीज में आप देखो ना, फ्लैग बना दो, ये कर दो, सिंबलिज्म हो गया, सो नोबडी विल डिस्कस, सब इसी में बिजी हो जाएंगे और उनको लगेगा कुछ हो रहा है.
हो रहा है. एंड आई थिंक कि वी अंडरएस्टिमेट द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज. हमें लगता है कि अरे ये तो ब्रिटेन में चल रहा है, ऑक्सफोर्ड होगा कोई, मतलब है एक छोटा सा यूनिवर्सिटी, बड़ा सा यूनिवर्सिटी पर दूर है, भारत में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा, तो हमें इसके बारे में बात नहीं करना चाहिए. बट लेट मी टेल यू, ये जो एकेडीमिया, ये जो नेक्सस है, ये टॉप डाउन है. तो इफ दीज पीपल आर रैंक्ड वन, देन ऑल ऑफ अस आर समहाउ कमिंग अंडर देयर अम्ब्रेला. उनकी छत्र छाया में हम आ जाते हैं और कहीं ना कहीं उनकी इन्फ्लुएंस हमारी सिस्टम पे, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पे, उस पर रह जाता है और हमारी साइकोलॉजी पे भी उसकी इफेक्ट रहती है. द फर्स्ट टाइम आई हर्ड दैट द कॉलोनाइजेशन वॉज अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस ऑन द इंडिजिनियस पीपल वॉज एट ऑक्सफोर्ड, वॉज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड. और लेटर मैंने जाना कि यहाँ पे सोशल साइंसेस में पढ़ाया जाता है कि ब्रिटिशर्स ने हमें रेलवे दिया, ब्रिटिशर्स ने हमें सिविलाइज किया. मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, सो आई मिस्ड आउट दैट पार्ट ऑफ द सिलेबस जहाँ पे हमें बाद में पढ़ाते हैं कि ब्रिटिश डिड समथिंग गुड इन भारत. बट मैंने फिर जाना कि भारत में भी यही पढ़ाया जाता है इन द सोशल साइंस सर्कल्स, कि द ब्रिटिश गेव अस रेलवेज, द ब्रिटिश यू नो गेव अस द रोडवेज, द ब्रिटिश डिड दिस, ब्रिटिश डिड दैट, दे ब्रॉट अस अंडर वन दिस थिंग, दे एंडेड द डायनास्टिक रूल, दे गेव अस डेमोक्रेसी.
वही सारा तो सारा जो व्हाइट मैन्स प्रिविलेज का जो पूरा का कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे व्हाइट पूरा किया जाता है,
बनाते हैं और उसको दुनिया भर में फैलाते हैं. तो अगर वहाँ आप जड़ से इस
I don't blame them, मतलब उनका तो काम ही है, मतलब उनकी यूनिवर्सिटी है, उनको करना चाहिए, हम क्यों कर रहे हैं,
हम क्यों कर रहे हैं. एंड आई फेल्ट कि चलो यहाँ जड़ से काट लेंगे तो कहीं ना कहीं तो ये पहुंच ही जाएगा. मतलब इट्स अ टॉप डाउन अप्रोच एंड आई थॉट एज प्रेसिडेंट आई हैड द यू नो अथॉरिटी टू क्रिएट दीज पॉलिसी चेंजेस. The president had a lot of liberties to create active change if they wanted to. They could choose ki mujhe diversity week karna hai ya mujhe actively policy change lana hai. So my entire campaign was around decolonization. And jab ye baat maine kari na, it caught on like fire. And it was not the Indian people who came first to support me. It was the African students. It was the South American students. Itni hamari shared history, itni shared suffering hai na. इट ओनली मेक्स सेंस कि भारत ने G20 से G21 कराया और अफ्रीकन यूनियन को क्या कहते हैं वर्ल्ड स्टेज में इंक्लूड किया. आई फील कि हमारी जो सॉलिडारिटी है, हमारे जो भाई हैं, यही सिविलाइजेशंस है जो हम हमारे साथ क्या एम्पथाइज कर सकते हैं. द वेस्टर्न पीपल माइट गिव अस अ सीट एट द टेबल क्योंकि हम अभी अनइग्नोरेबल हो गए हैं इन टर्म्स ऑफ आवर इकोनॉमी एंड इन टर्म्स ऑफ आवर पॉपुलेशन, बट वो हमें कभी अपना नहीं मानेंगे. अपना जो मानेंगे वो हमारे सिमिलर एक्सपीरियंसेस वाले ही मानेंगे. और वो आप डोमेस्टिकली अपने भारत की अगर आप दुनिया में भी देखोगे एज अ पोजिशन, तो आप ऐसे ही देखोगे जैसे G20, G21 हुआ, अफ्रीकन यूनियन, तो हमारे जो नेचुरल एलाइज है यही लोग हैं. आई थिंक आई लर्नड दिस एट ऑक्सफर्ड एंड दैट वाज हाउ दिस मूवमेंट बिगन एंड पीपल रियली स्टार्टेड कनेक्टिंग कि चलो ये हमारी है, हमारी बात कर रही है, यू नो वी शेयर दैट यू नो कॉमन बॉन्ड एंड दैट्स हाउ द सॉर्ट ऑफ एंटायर इलेक्शन टू.
तो आपने असलियत में डीकोलोनाइजेशन करने की कोशिश करी तो उनको अच्छा नहीं लगा या कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो ये हिंदू वाला एंगल कहां से आया?
तो
ये तो आप अच्छी बात कर रहे थे, आप तो उनकी पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे थे.
तो दैट वाज वन थिंग. देन तीन चार और पॉलिसीज थी कि वी विल इंक्रीज मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज, हॉस्टल में ये कर देंगे वो कर देंगे, जो नॉर्मल कैंपस पॉलिटिक्स होती है. इट वाज जस्ट अराउंड कि कैंपस में प्रॉब्लम्स ये हैं, हमारी सिलेबस में ये प्रॉब्लम है, हम इसको इस तरफ चेंज करेंगे. देयर वाज अ क्लियर मैंडेट, आई बिकम प्रेसिडेंट. आई थिंक अ लॉट ऑफ द पीपल हु आर ऑन द अदर साइड ऑफ द डीकोलोनाइजेशन डिबेट, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़की जीतेगी सबसे पहले, क्योंकि दे सी देयर सुप्रीमिस्ट पोजिशन एज एब्सोल्यूट ना. वो नहीं जानेंगे कि हम सब ऐसे यूनाइट हो सकते हैं ऑन दिस काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म. तो हो गई मैं तो अब तो हटाना पड़ेगा. तो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. आई थिंक इन चाइनीज सॉर्ट ऑफ दैट कल्चरल रेवोल्यूशन जब हुआ था माओ का, विच वॉज बेसिकली बेस्ड ऑन प्रोपोगंडा, तो देयर वॉज इज वेरी फेमस सेइंग कि अगर आप किसी चीज़ को गलत साबित करना चाहते हो या किसी इंसान को गलत साबित करना चाहते हो तो आपको बहाना मिल जाएगा. तो आई थिंक हिंदू आइडेंटिटी वॉज द बहाना दे फाउंड. एंड हिंदू आइडेंटिटी इज वन सच आइडेंटिटी विच इज विलिफाइड ग्लोबली, इतना ज्यादा एकेडेमिकली, पॉप कल्चर में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, कि आप अगर एक हिंदू पे तीन चार भी एलिगेशन लगा दोगे ना तो वो वहाँ वहीं पे विलन बन जाएगा. मतलब आपका एक बना बनाया विलन है, आपको बस उसको ब्रांड करने की देरी है. So that was a strategy that they used. If you see my entire campaign, you can, you know, page by page, maine with screenshots, with emails, with all the communication that went around, all the, you know, transcripts of the interview, sab maine yahan pe diya hai. Aap dekhoge ki Hindu identity kahin aayi nahi hai. Ek
to global, ye baad mein jeetne ke baad aaya hai.
Jeet ke baad aayi hai aur meri taraf se nahi aaya hai, unki taraf se aaya hai.
Haan, kyunki it makes sense na, kyunki agar aap sirf Hindu identity ko aage leke jaate तो कौन वोट डालता, क्योंकि वहां पे तो बहुत सारे 100 देशों के लोग अगर हैं तो हिंदू तो बहुत कम होंगे.
एंड इट इज नॉट ऑल्सो समथिंग ना, रिलीजन इज नॉट द बेसिस ऑफ अ कैंपस इलेक्शन, और आई डोंट थिंक रिलीजन इज द बेसिस ऑफ एनी इलेक्शन. इट्स बेस्ड ऑन यू नो रोटी कपड़ा मकान टाइप ऑफ ये क्या कहते हैं इशू. एंड वहां पे तो इशूज अलग है. And identity was never part of my politics. मैंने कभी अपनी identity को उसमें ऐसे धकेलने की कोशिश नहीं की. I thought कि चलो हम कुछ अच्छा करते हैं इस campus पे, जिससे लोगों का फायदा हो, जिससे हमारी society बदले, लोगों का भला हो by the end of the day. And that we do something right to correct the wrongs of our past. That was just the, क्या कहते हैं, basic intent. वो जो naive बच्चे होते
हैं, दुनिया बदलेंगे,
हम निकले हैं दुनिया बदलने, हम सब चीज़ें ठीक करेंगे, पहले कुछ चीज़ें गलत होती थी. एंड आई थिंक आई मस्ट से आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल हु बिलीव कि चेंज हैपन्स थ्रू क्या कहते हैं रिवोल्ट. मैं वो रिबेल विदाउट अ कॉज में बिल्कुल विश्वास नहीं करती. मुझे लगता है कि अगर आपको चेंज करना है तो आपको सिस्टम को ही बदलना है, आपको सिस्टम में घुसने की ज़रूरत है. तो मैं तो बाहर बैठ के बहुत कुछ कर सकती थी, पोस्टर बनाओ, ऐसे बैठ जाओ, हर दिन एक नया प्लकार्ड बनाओ, या फिर मतलब अनशन करो, या फिर स्ट्राइक बुलाओ, ऐसे तो कर सकते हैं. बट आई थिंक सिस्टम को चेंज करने का अलग तरीका है, नॉट अ रेबल विदाउट अ कॉज. तो मैंने अपना मतलब मार्ग चुना एंड दे यूज द सिस्टम ओनली अगेंस्ट मी. एंड द हिंदू आइडेंटिटी वॉज समथिंग मुझे लगता है बना बनाया रेडी मिक्स मिला उनको, इसको हटाना है तो उन्होंने लगा दिया.
लेकिन इन लोगों को मतलब इतना क्या दिक्कत है, क्योंकि ये बात सिर्फ ऑक्सफोर्ड की नहीं है, ये बहुत सारे जो फॉरेन ऑथर्स हो गए, जो इन यूनिवर्सिटीज से एसोसिएटेड हैं, प्रोफेसर्स हैं या कोई और हैं, वहाँ से जो राइटिंग्स आती हैं खासकर जो हिंदुइज्म पे, वो उदयनिधि स्टालिन की स्टेटमेंट्स और इनसे ज़्यादा अलग नहीं है. तो ये जो और बायस भी देखिए, अगर पाकिस्तान इंडिया की बात होती थी जब, तो ये सिर्फ पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे. मतलब देर इज सर्टेन हिस्ट्री कि जब भी बात आएगी हिंदू से रिलेटेड या हिंदुइज्म से, डीकोलोनियलिटी बहुत अच्छी बात है लेकिन हिंदुओं के लिए नहीं, वो नहीं कर सकते इस पे बात, है ना. वहाँ पे दिक्कत आ जाती है, बाकी सब ठीक है, अफ्रीकन और वो सब ठीक है, पाकिस्तानी हैं वो भी ठीक है, और कहीं से देश में वो भी ठीक है, लेकिन ये हिंदू नहीं, इनका इनका हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये क्या चक्कर है कि ये क्या आइडियोलॉजिकल है कि पूरे एकेडमिया में, वेस्ट की एकेडमिया में इतना बायस क्यों है हिंदुइज्म के खिलाफ? क्या ये एक मतलब अब्राहमिक माइंडसेट है जो वहाँ के लोग हैं, मतलब इट कंसीडर्स देम डेविलिश, जो इनका स्टेटमेंट्स भी आते हैं
होता है,
इंक्लूडिंग मतलब ऐसे जॉर्डन पीटरसन टाइप के जो जिनको सेलिब्रिटी बना रखा है इंडिया में, वो उनके भी स्टेटमेंट्स देख लीजिए, देवी को वो जिस तरीके से बोलते हैं। तो मतलब ये क्या है, एक इनहेरिटेड बायस है इनके रिलीजन के, रिलीजियस व्यूज के अकॉर्डिंग? क्योंकि मतलब अगर आप कंजर्वेटिव लोगों की भी बात छोड़ दें, जॉर्डन पीटरसन तो कंजर्वेटिव टाइप के लोग हैं, लिबरल जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं उनमें भी कहीं ना कहीं अंदर में ये बायस है हिंदूज के खिलाफ।
तो आई थिंक इसके लिए एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, आई विल टेक यू बैक टू द 10th century के लिए। तो आप 10वीं शताब्दी इससे पहले कि भारत वॉज यू नो लूटेड, वॉज ऑक्यूपाइड, जब भारतीय सिविलाइजेशन वॉज एट इट्स पीक, 33% ऑफ द वर्ल्ड्स GDP, सोने की चिड़िया, तो तब हिंदू शब्द जो है इसकी बहुत अच्छी मीनिंग थी। अगर आप फरांगे आमिद, एक पर्शियन डिक्शनरी है, उसको देखोगे तो हिंदू को दे डिस्क्राइब एज द मोल, द ब्लैक मोल ऑन अ ब्यूटिफुल गर्ल्स चीक। उसको ऐसे मुहावरों के साथ उन्होंने डिस्क्राइब किया है, इतना सुंदर है कि एक छोटी सी जो लड़की है, सुंदर सी लड़की, उसके चेहरे पे जो वो ब्यूटी मार्क होता है, ब्लैक स्पॉट जिसको ब्यूटी स्पॉट बोलते हैं, वो है ब्लैक मोल ऑन अ ब्यूटिफुल गर्ल्स चीक। दे ऑल्सो डिस्क्राइब हिंदू द वर्ड कि लड़कियों को दिल चुराने वाला, दैट ब्यूटिफुल, ऐसे उन्होंने उसको फरहांगे आमिद में डिस्क्राइब किया हुआ है। और पर्शियन राजाएं, बहुत इंपॉर्टेंट राजा, अपनी वाइफ, अपनी बेटियों का नाम हिंद रखते थे, क्योंकि इट वाज अ वेरी क्या कहते हैं प्रेस्टिजियस वर्ड, क्योंकि इस वर्ड से जुड़ा हुआ था एक ऐसा कल्चर विच वाज एट इट्स पीक विद रिस्पेक्ट टू इट्स इकोनॉमी, विद रिस्पेक्ट टू इट्स मिलिट्री, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सिविलाइजेशन एंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स फिलोसफी। एक तरह से इवॉल्व्ड स्पीशीज, एक इवॉल्व्ड कम्युनिटी सोसाइटी था, तो इट वॉज अ वेरी प्रेस्टिजियस वर्ड। हमारी हिस्ट्री बहुत ही टूटी फूटी है, अगर हम अपनी हिस्ट्री में देखेंगे ना, ये सब हमें मिलेगा नहीं, तो हमें पर्शियन, जो दूसरों ने हमारे बारे में अच्छी चीज़ें लिखी है ना, उसी को देखना पड़ेगा। तो हाल ही ने एक पोएम लिखा है पर्शियन में, वो दीन हिजाजी का बेबाक बेड़ा, तो इसमें वो ये लिखता है कि देर वॉज अ वेरी माइटी कॉन्करर who went all across the world, उसका पराक्रम unparalleled था, वो 7 समंदर उसने पार किए हुए थे, पर वो गंगा के तट पे आके डूब जाता है। तो the whole concept was that भारत जितना सुंदर था, जितना प्रसिद्ध था, was described very beautifully through its people, through its culture, through Hindus around the world, was also something that was envied across the world. लोग इसको अपने कब्जे में लाने की कोशिश करते थे, and they failed to do so using their might. And this is a poem from their own, you know, collections. Ki they tried to, you know, capture Bharat with force and they couldn't do it. Mahabharat mein bhi likha hai ki mighty kingdoms which cannot be drowned with force can be drowned with a crooked intellectual. To unhone bas yahi kiya. If you go to the next dictionary, which is Lughat, they changed the meaning of the word Hindu in that. So Hindu becomes black, chor and kafir. Black from the black mole on a beautiful girl's cheek, usse unhone black nikala, phir unhone nikala the boy who steals the girl's hearts, se unhone nikala chor, steal, chor nikala, aur phir kafir to hai, because they are the other,
it's a recorded thing.
It's actually there, if you look farangi Amit, abhi Delhi University Vishwavidyalay ke aapke kisi to isme milenge aapko, आर्काइव्स में मिलेंगे आपको, तो आप अगर फरांगी आमिद, लुगात, ये डिक्शनरीज देखोगे,
पहली बार सुन रहा हूँ, इंटरेस्टिंग,
ये डिक्शनरीज देखोगे तो देयर इज अ क्लियर डिस्टॉर्शन ऑफ द मीनिंग। तो इन्होंने हमें डिस्टॉर्ट किया, बिकॉज जिस चीज को आप फोर्स से हासिल नहीं कर सकते हो, उनको बांट के, उनको उनका आत्मसम्मान और आत्मबल तोड़ के उनपे जीत हासिल की जाती है। तो दैट दे अंडरस्टूड, दैट देयर इंटेलेक्चुअल्स अंडरस्टूड, और उन्होंने वही हमारे साथ किया हिस्टोरिकली, एंड दिस हैज हैपेंड टू अस सिंस 10th century, 10वीं शताब्दी से हमारे साथ ये चलता आ रहा है, एक ना एक तरीके से हमें तोड़ा जा रहा है। तो अभी इतना विलिफिकेशन होना तो सहज ही होगा ना, क्योंकि ये 10वीं शताब्दी से कर रहे हैं और इसको काउंटर करने के लिए हम 10वीं शताब्दी से भी कुछ कर नहीं रहे हैं. सो द डिस्टॉर्शन इज सो डीप, द डिस्टॉर्शन इज सो मैसिव, द डिस्टॉर्शन इज सो कंटिन्यूअस, एंड द डिस्टॉर्शन इज समथिंग दैट वी इवन डोंट नो अबाउट. आपको भी ये बात पता नहीं है, किसी को भी ये बात नहीं पता कि इन्होंने ऐसे डिस्टॉर्शन शुरू किया है तब से. एंड द दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल दैट आई एम यू नो गिविंग यू कि इन्होंने कैसे हमारा पूरा मतलब ही तब क्या कहते हैं मीनिंग ही हमारा बदला. एंड हमें ये हिस्ट्री में भी नहीं पता कि यू नो वी जस्ट रीड अबाउट कि एकाध युद्ध के बारे में हम सीख जाते हैं जहाँ पे हम हारे थे, तो हमें लगता है कि मुगल आए, हम सब कमज़ोर थे, उनके आते ही हम हार गए और मतलब हमारे राजा तो सारे नालायक निकम्मे थे. यहाँ पे हम उन करोड़ों यू नो एंडलेस क्या कहते हैं युद्ध के बारे में पढ़ते नहीं थे जहाँ पे हमारी जीत हासिल हुई थी और हमारे राजाओं ने उनको भगाया था, बार बार भगाया था. एक पूरी सेंचुरी ऐसी रही है जहाँ पे हमने भगाया था और उसी सिलसिले में हाल ही ने वो कविता लिखी थी दीन हिजाजी का बेबाक बेड़ा, उनके हिस्ट्री में ये लिखा हुआ है और हमारी हिस्ट्री में तो इसका कहीं पे भी जिक्र ही नहीं है कि हम कैसे
रेजिस्टेंस की जो
कि हम कितनी पराक्रमी थे और हम हारे भी कब हारे, जब हम बट चुके थे, जब हमारे बारे में मतलब इतनी मतलब ये थी कि हमारे अपने लोग उनके साथ जुड़ने लगे थे. हम तभी हारे ना जब हमारे सेना की सेनानी उनके साथ जुड़ जाते थे, कोई ना कोई एक निकल जाता था हमारे खेमे में. ये और ये सब कैसे हुआ, हाउ थ्रू डिस्टॉर्शन, हाउ थ्रू ब्रेकिंग ऑफ आइडेंटिटी, हाउ थ्रू क्रिएशन ऑफ सेपरेट आइडेंटिटीज, ये सब हुआ है. इवन इफ यू रीड कंटेम्प्रेरी लिटरेचर यू कैन सी कि कैसे ब्रिटिशों ने भी हमें लैंग्वेज के बेसिस पे बांटा, कैसे द वेस्ट हैज सुपर इम्पोज दिस आर्यन इन्वेजन थियोरी टू क्रिएट दिस एंटायर रेस कॉन्सेप्ट विद इन द होल यू नो भारत, सो दैट वी ऑल स्टॉप आइडेंटिफाइंग एज हिंदू एंड इट इज अ रेस कल्चर.
अब मतलब अगर आप देखोगे किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने एक दूसरे को यूज किया है, कम्युनिटीज को यूज किया है, इंडिया में सिखों को किस तरीके से हिंदुइज्म से बाहर किया, उसके बाद आप द्रविडियन वर्सेस नॉर्थ का पूरा जो लड़ाई है वो आर्यन वाला जो थ्योरी है उसको जानबूझ के लेके आए कि नॉर्थ साउथ का डिवाइड हो, नॉर्थ ईस्ट में जो इन सब ने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया पिछले 100 सालों में जो कन्वर्जन हुआ है, तो वो पूरा का पूरा डेमोग्राफी चेंज कर दिया. तो ऑल दीज प्रॉब्लम्स, कश्मीर इंक्लूडेड, जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान का पार्टीशन, मतलब पूरा का पूरा सारा जो इन्होंने कांड किए हैं ना ये पिछले 200 सालों में 300 सालों में, ये मतलब अब ये है कि इंटेलेक्चुअल कवर फायर एक तरीके से अपने एक्शंस को भी जस्टिफाई कर रहे हैं.
एक्शन जस्टिफाई करने की बात नहीं है अरिहन जी, हमें कभी कभी लगता है ना कि डीकोलोनाइजेशन एक प्राइड की मूवमेंट है, इट्स अबाउट योर प्राइड और समथिंग. मुझे लगता है इट इज अ सिंपल मार्केट प्लेस इक्वेशन, जब तक वो सुप्रीम रहेंगे मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा वही कमाएंगे, जब हम सुपीरियर बन जाएंगे तो हम बीपीओ का काम करना छोड़ देंगे और अपना धंधा चलाना शुरू कर देंगे. अब उन्होंने चंद्रयान जब हुआ, आई विल गिव यू अ वेरी रीसेंट एग्जाम्पल, अब हम 10वीं शताब्दी छोड़ देते हैं, अभी की बात करते हैं, चंद्रयान मिशन सक्सेसफुल हुआ तो उन्होंने हमें गाली देना चालू कर दिया कि अरे आप तो इतने गरीब हो, आप टॉयलेटें बनवाओ, आप क्यों चंद्रयान का मिशन करा रहे हो. तो उन्होंने हमारे आत्मसम्मान पे यू नो ये करने की कोशिश की. बट आई विल टेल यू, ये मून मिशन कोई प्राइड की बात नहीं है, इट इज नॉट सम काइंड ऑफ क्या कहते हैं रेस कि हम पहले पहुंच गए, देखो हम कितने महान है, ये ऐसा बात नहीं है. मून मिशन हैज ऑलवेज बिन अ मिशन टू कॉलोनाइज इट्स रिसोर्सेज, कि वहाँ पे एंडलेस रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं जिनको माइन करके मतलब फिर दुनिया भर में यूज किया जाएगा. सबसे पहले जो साउथ पोल ऑफ द मून, जो जहाँ पे हम सबसे पहले गए हैं अभी, वहाँ पे हीलियम रिजर्व्स माना जाता है कि सबसे हाई हीलियम रिजर्व्स वहीं पे हैं. हीलियम इज कंसिडर्ड टू बी द फ्यूचर ऑफ एनर्जी, बिकॉज हीलियम इससे हमें एनर्जी मिलती है एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ फ्यूचर ऑफ क्लीन एनर्जी, एंडलेस एनर्जी फॉर दी अर्थ. तो सबसे पहले जो वहां पे पहुंचेगा तो वही बनेगा ना अगला अरबपति, वहीं से तो बनेगा. तो सबसे पहले हम पहुंच गए तो हमें उन्होंने बोल दिया कि आप कुछ और करो, हमारे लोग तो इतने शैलो हैं, इनको इसकी डीपर मीनिंग ना समझना है ना किसी को पढ़ना है. सब लोग लैच ऑन कर देते कि अरे यार हम ये सब क्यों कर रहे हैं, मतलब अपनी महानता करने के लिए, वाहवाही करने के लिए हम गए. कोई पढ़ता नहीं है, कोई जानता नहीं है कि they are just using this kind of a psychological warfare to make ourselves feel weak so that we never do these things and we are permanently dependent on them and we will keep making them rich and keep lining their pockets.
एक ये भी है strategic जो आपने बताया वो भी reason हो सकता है जो मुझे
ये reason है क्योंकि by the end of the day उनको बस इसी बात से फर्क पड़ता है कि हमारे खाते में कितना पैसा आ रहा है आपको क्या लगता है the struggle that happens by the end of the day अगर आप सब चीजों को उससे हटाओगे it comes down to power and money. Money for power. That's it. It is supremacy is just a game of power and money. Iske alawa to kuch hai nahi. And they weaponized religion to do so. All the Abrahamic religions, they hated on these non-Abrahamic polytheistic religions which were evolved, which were rich. Taki their people develop an inherent hatred for this identity and that hatred can be weaponized to make these people feel inferior and then unpe raj kiya jayega unko abuse kiya jayega unko mine kiya jayega
ha mujhe lagta hai ki ye ek strategical strategy hai lekin kahin na kahin ek deeper usme agar jaye psychology mein to inko agar aap pichle 500 salon ki history dekhen jab se britain ka rise hua fir uska jo bataan tha wo us ko mil gaya so-called leader of free world. तो ये एक इनके दिमाग में अभी का जो recent memory में कोई ऐसी civilization है ही नहीं जो उनसे आगे जो white man है उससे आगे निकली हो. तो इनको लगता है कि ये काले वाले लोग ये यार ये कैसे rise कर रहे हैं? Because racism जो है ना वो wired in है.
Wired in.
For centuries they used to own slaves till like 200 years back, 150 years back. तो वो कहीं ना कहीं एक deep उनके अंदर में है और मतलब सिर्फ भारत की बात नहीं अगर अफ्रीका से भी कोई ऐसा माइटी पावर राइज होगा तो दे विल ट्राई टू डिस्ट्रॉय इट सो चाहे चाइना का है चाहे वो है चाइना वाले तो खैर अलग ही प्रॉब्लम है लेकिन मतलब बात यही है कि इनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार अभी तक तो 570 साल पहले तो इन पे राज कर रहे थे हम और हम तो ये कहते थे इनसे कुछ संभलेगा भी नहीं टूट फूट जाएंगे या आपस में बिखर जाएंगे इनके से कहाँ रूल कर पाएंगे ये लोग यही तो बोला था चर्चिल ने और जब ये लोग देखते हैं कि ये तो मून पे पहुंच गए तो उनको ये तो होता है कि ये तो तभी तो वो बात आती है ना कि हमारे पैसे जो है हाँ, ना हमने एड दिया है
जबकि उनकी इन्वेस्टमेंट के पैसे हैं
तो वो तो खुद ही और उनको ये भी लगता है कि हजार साल से इनको मारने की कोशिश कर रहे हैं कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा कोई है ही नहीं पूरे दुनिया में जिनको हमने हजार साल छोड़ो 100 साल भी कोशिश किया और नहीं बदला हो सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जो ना इतना ढीठ है कि ना तो कन्वर्ट होते हैं ये हैं थोड़े बहुत हो गए वो है लेकिन ना तो कन्वर्ट होते हैं ना ये
मारो ना ये लोग उभरते हैं हाँ, ये लोग सरवाइव करते हैं
रेजिस्टेंस अनपैरेलल्ड
है और जब इनको डिस्क्रिमिनेट भी किया जाए इनको व्हेनेवर दे पुश्ड इनटू अ कॉर्नर एज वेल ये लोग वहां से उभर जाते हैं दे डोंट यूज देयर क्या कहते हैं weaker positioning and discrimination as an excuse not to excel. I think that is one, you know, advantage jo hamara hai. Hum kabhi usko excuse nahi karte hain. Jab mere saath ye sab hua, and when I was pushed into a corner, literally bullied, harassed, sent death threats on campus, jabki main ghar se itni dur hun, I never used it as an excuse to drop out of my course,
Victimhood wala.
I never used it as a excuse. I graduated with merit. And you know, maine apna, matlab, I fought back. The people making those statements, I made sure there was action against them. So I think hamari ek civilizational trait ye hai, jo hamare, I think genetic programming mein hai, ki hum log survivors hai. Humko kitna bhi aap neecha dikhao, we will never use it as an excuse not to excel. हम अपनी डिसएडवांटेज को भी अपनी एडवांटेज में हमेशा से ये करते हैं एंड आई थिंक ये हमारी धर्म से आती है धार्मिक रूटिंग से आती है जो हमारी रिलीजन की जो फिलॉसफी है ना आई थिंक रिलीजन इज़ अ वेरी शैलो वर्ड टू डिस्क्राइब व्हाट वी हैव इन हिंदू धर्म आई थिंक इट इज़ सो मच ब्रॉडर देन दैट एंड धर्म इज़ दिस काइंड ऑफ वे ऑफ लाइफ इट्स अ थॉट प्रोसेस जिसको आप रिलीजन नहीं कह सकते हो क्योंकि वो कोई एक डिक्टाट नहीं है इट इज़ जस्ट लिटरल विल टू survive, literal will to go towards light, even from the darkest of rooms. That will to, you know, andhere se ujale ki aur jane ki, asatya se satya ki aur jane ki, aur paropakar aur seva ko apna param dharm banane ki jo wo hoti hai na, andar se jo bhook hoti hai. I think that is hamara dharm. Ye koi matlab likha hua nahi hai ki aap matlab char baar mandir jao, paanch baar matta teko ya matlab kuch karo aise. Ye ek prescription nahi hai. ये एक अंदर की एक डायरेक्शन है कि आपको जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, कैसे अपने साथियों को ट्रीट करना चाहिए और कैसे अपने मतलब नेचर के साथ हो या अपने सोसाइटी के साथ हो एग्जाम्पल बन के जीना है. आई थिंक इट इज़ दैट एंड दैट हैज़ व्हाट हैज लेफ्ट अस. इट इज़ द हिंदू धर्म विच इज लेफ्ट अस एज सर्वाइवर्स डिस्पाइट एवरीथिंग.
लेकिन कुछ चीज़ों में तो ये लोग सक्सेसफुल हुए हैं, जैसे हम अभी बात कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट वाला एक एग्जाम्पल है, पंजाब वाला एक एग्जाम्पल है, अभी भी बर्निंग इशू है, साउथ वाला भी एक, नॉट साउथ, आई शुडंट से साउथ, बट द्रविडियन आइडियोलॉजी का सीडिंग एज वेल एज नरिशमेंट और प्रमोशन जो आजकल लाइक वेस्टर्न पावर्स हैं, दे कैन यूज इट टू देयर ओन एडवांटेज. दे हैव दिस लैंग्वेज थिंग, दे हैव दिस आर्यन
थ्योरी जिसकी ना कोई क्या कहते हैं इसकी कोई ना हिस्टोरिक.
दीज आर ऑल कार्ड्स राइट. वेन एवर यू वॉन्ट टू प्रेशराइज इंडिया, वहाँ पे एक बंदे को छोड़ दो, टी शर्ट्स प्रिंट करवा दो जिसपे लिखा होगा ये कि हिंदी, हिंदी की कोई बात नहीं चल रही है, कहीं से रैंडम से आ जाएगा कि हिंदी इज नॉट माई. अरे ठीक है तो कौन कह रहा है तुमको, मतलब तुमको. तो ये सब मतलब ये अपने आप से नहीं आती है, देर इज समवन हु इज कॉन्स्टेंटली फीडिंग दिस. तो वहाँ से एक और बात आ रही, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया, तो आप कर्नाटका से हैं, बताइए क्या मतलब कौन सा स्टेट बनाएंगे. अभी कावेरी का तो आप लोग रिजोल्व नहीं कर पा रहे हैं इशू है, आज मतलब लिटरली उसी पे लड़ाई चल रही है, कर्नाटका वर्सेस तमिलनाडु, उसके बाद फिर केरला वर्सेस तमिलनाडु भी होता है, केरला वर्सेस कर्नाटका भी होता है, आंध्र ठीक है मेरे ख्याल से उनको कोई ये नहीं, हाँ तुम लोग आपस में कुछ कुछ चलता रहता है क्योंकि शायद उनका इतना वो नहीं है, चेन्नई बेचारों से जब से चिना है तब से वो चुप बैठे हैं,
रुके रहे हैं और अपना
और अभी तो स्टेट भी स्प्लिट हो गया
है, तो बट दे आर लाइक
प्रॉस्पेरिंग एनीवे. बट द थिंग इज कि ये एक ऐसा इशू है जो हमारी सिविलाइजेशन के हिसाब से काफी ट्रबलिंग है, इन दैट सेंस कि सबसे विशाल मंदिर देखिए आप तमिलनाडु में है, सबसे भव्य मंदिर और सबसे मतलब डिवोटेड लोग आप देखेंगे कि जो नित्य अपना पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, नॉर्थ में नहीं जाते हैं इतने लोग, तो वहाँ पे जाते हैं तो वो जब देखते हैं कि यार ये लोग टीका भी लगाया हुआ है इन्होंने और मंदिर भी जाते हैं ये लोग, और फिर ये मतलब उदयनिधि स्टालिन जब बोलता है कि सनातन धर्म एक बीमारी है और उसको हम ख़त्म करेंगे, तो ये लोग कुछ रिएक्शन भी नहीं देते, ये तो लोग इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, मतलब विभूति लगाए हुए लोग उदयनिधि स्टालिन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये थोड़ा आइडियोलॉजी समझाइए. मैं जानता हूँ कि कर्नाटका में इस नॉनसेंस का कोई बायर नहीं है, हालांकि थोड़ा सा अभी ये लैंग्वेज की वजह से द्रविडियंस आर ट्राइंग टू एंड द हायर पावर्स आर ट्राइंग टू कन्वर्ट कर्नाटका इंटू अनदर द्रविडियन स्टेट, बट एक्सेप्ट द लैंग्वेज थिंग, इट डजंट हैव दैट रेजोनेंस. तो आप बताइए क्या है ये, मतलब व्हाट इज दिस मेंटेलिटी.
देखिए आदि शंकराचार्य जी केरल में पैदा हुए थे, तो उस हिसाब से तो उनको कहीं पे भी कुछ करने की मतलब बहुत सारी बाधाएं आनी चाहिए थी, पर उन्होंने कैसे इस देश के चार कोनों में शक्तिपीठ एस्टैब्लिश किया, अपनी बातें रखी. तो भाषा हमेशा से हमारी एक क्या कहते हैं खूबी रही है, समथिंग दैट मेक्स इज ऑल डिफरेंट. जैसे हम हर दिन नए कपड़े बदल लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम अलग इंसान बन जाते हैं, कपड़े बदलने से इंसान तो अलग नहीं बनते. तो हमारी जो कल्चर है ना, लैंग्वेज की हो, फूड की हो, ड्रेसिंग की हो, वो ऐसे ही एक एक्सटर्नल चीज़ रही है. हमारा जो कोर प्रिंसिपल है ऑफ परोपकारा, सेवा और सत्य, ये हमारा एक ही रहा है. अगर आप दक्षिण के किसी भी घर में जाओगे, उत्तर के किसी भी घर में जाओगे, कहीं पे भी आप जाओगे और आप कहोगे कि अरे हमें मतलब कुछ चाहिए या आप थोड़े हेल्पलेस लग रहे हो, तो कोई भी आपकी मदद करने के लिए आगे आ जाएगा. अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो किसी शॉप में जाके पानी खरीदने में क्योंकि आपको लैंग्वेज नहीं आती, कोई आपके आके इतनी मदद करेगा कि वो आपको खरीद के दे देगा और आपसे पैसे नहीं लेगा. So people go out of the way to do this, and this is the fabric of our क्या कहते हैं देश,
और north south east west पूरी जो ये भूमि है, sacred geography जो है वो मंदिरों से और इनसे connected है, जिनके पुजारी अगर north के किसी मंदिर में देखेंगे तो आप south का south कोई traditionally
रहा
for hundreds of years, and you think कि ये क्यों किया होगा,
क्यों किया होगा.
भाई क्यों करेंगे कि वहां की ब्राह्मण फैमिली या नॉन ब्राह्मण फैमिली का ही प्रीस्ट
यहाँ पे
बद्रीनाथ में होगा, केदारनाथ में होगा या और कोई टेम्पल में होगा, ये क्यों किया गया होगा?
I'll give a very small example. जो धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर देवस्थान है वहाँ के जो पुजारी है वो वैष्णव है और वहाँ जो भगवान है वो शिव है, तो होना तो नहीं चाहिए. वहाँ के हर पुजारी अकॉर्डिंग टू द क्या कहते हैं वहाँ की रूल हैज टू बी अ वैष्णव. एक वैष्णव पंडित महादेव की पूजा करता है और वहाँ के जो धर्माधिकारी हैं वो जैन संप्रदाय के होते हैं. तो आई थिंक हमारी जो पूरी सभ्यता रही है, नॉर्थ में हो साउथ में, नेपाल में जो पशुपति नाथ मंदिर के पुजारी हैं वो ट्रेडिशनली उडुपी के ही होते हैं.
उडुपी के बताइए,
जो मेरे मतलब लिटरली नेबर हैं उन्हीं के परिवार के लोग ही वहाँ पे जो चीफ प्रीस्ट होते हैं, जो बहुत ही फेमस पशुपतिनाथ मंदिर है वहाँ के, वहीं हो सकते हैं. तो हमारे जो सभ्यता है इट हैज़ ऑलवेज यूज्ड डाइवर्सिटी एज अ पॉइंट ऑफ यूनिटी, नॉट एज अ पॉइंट ऑफ डिविजन. हमने उसको अलगाव का एक कभी यही नहीं देखा है. वी हैव नेवर सेपरेटेड आवरसेल्व्स बेस्ड ऑन एक्सटर्नल अपीयरेंसेस और प्रैक्टिसेस. वी हैव ऑलवेज यूनाइटेड अस बेस्ड ऑन हमारे दिल में क्या है, हमारी जो भाव क्या है. भाव यही है कि यू नो वसुधैव कुटुंबकम, सेवा परोपकार, यही हमारा भाव रहा है एंड दैट हैज़ बीन द यूनाइटिंग थिंग. एंड हमारा संप्रदाय हमें एकजुट रखने वाला रहा है, जो इट इनकरेज्ड पीपल ट्रैवल टू यू नो रिप्रेजेंट डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट पार्ट्स एंड इट हैज़ जस्ट केप्ट अस वेरी रिच एज अ सिविलाइजेशन.
नहीं बिल्कुल सही बात है. और अभी भी जैसे बात होती है तमिलनाडु के लोग ऐसे क्यों हैं, ये क्यों हैं, इस तरीके से सोचना जो अभी सोच बन गई है वो कभी सोच
वो
थी
कभी
नहीं,
सोच नहीं थी.
हम ये सोचते थे कि कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, तभी ये आइडिया भी आया होगा कि इनके प्रीस्ट को वहाँ, यहाँ के प्रीस्ट को उस वहां, हाँ. उस टेम्पल में लेके जाएं. तो दिस इज अ कनेक्शन कि इस तरीके से बॉन्ड्स जो है स्ट्रॉन्ग होंगे. तो ये हम सोचना ही बंद कर दें, शायद सोशल मीडिया की वजह से होगा कि यार गाली दे दो इसको, हर एक को एलिनेट करने की माइंड सेट हो गया
है ना. कि आपका नजरिया क्या है, क्या आप अ ग्लास इज हाफ फुल और हाफ एम्प्टी, आप कैसे इसको देखते हैं. हमारे पूर्वज हमेशा ग्लास को हाफ फुल मानते थे और थ्रू द इन्वेजन, थ्रू द सॉर्ट ऑफ पॉपुलर कल्चर, थ्रू द सॉर्ट ऑफ यू नो इनग्रेन ऑफ दीज काइंड ऑफ वेस्टर्न एकेडमिक आइडियाज, हम अभी ग्लास को हाफ एम्प्टी मान रहे हैं. एंड इट इज़ नॉट समथिंग शैलो. अरिहन जी, जो भी हम देखते हैं ना सोशल मीडिया पे, ये कोई स्पोरैडिक चीज़ नहीं होती है. इट इज़ जस्ट अ सिम्टम ऑफ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, जो आप हम अभी देख रहे हैं एज अ ड्रविडियन प्रॉब्लम और एज अ लैंग्वेज प्रॉब्लम. दिस वॉज सीडेड थ्रू द ब्रिटिश एंड इट वॉज सब्सटैंशिएटेड फॉर मेनी ईयर्स थ्रू एकेडीमिया. उन्होंने पहले के 50 साल तो सिर्फ स्टडी किया हमें, फिर उन्होंने बुक्स लिखना चालू किया, फिर उस बुक्स को कल्चर में सीड किया उन्होंने, फिर वो कल्चर से पॉपुलर कल्चर में आया, पॉपुलर कल्चर के थ्रू फिर वो पॉलिटिक्स में आया. ऐसा नहीं है कि वो अभी हमें किसी ने
fault lines are all well established. They have well studied them and now they are exploiting it.
Now they are exploiting it. तो इसको भरने में भी ना टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा और कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच लगेगा. बस एक कमेंट को, स्ट्रे कमेंट को काउंटर करने से कुछ होने नहीं वाला है.
नहीं, ये मैं और हाईलाइट करना चाहूंगा कि जो हमारे एनिमीज हैं वो किस तरीके से इन चीजों को यूज करते हैं, जो ऑलरेडी एक तो सोशल मीडिया का है, लाइक वी बिलीव कि ये असली आदमी है, ठीक है, पता नहीं क्यों. अब आप देखिए ऐसे बहुत सारे बोट्स हैं जो अभी आपको करंट इस वाले एनवायरनमेंट में जो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिनका नाम कुछ और था पहले और एकदम से अभी पगड़ी वाली फोटो आ जाएगी, सरदार वाला डीपी आ जाएगा, एंड दे आर डूइंग, दे आर सेइंग समथिंग अगेंस्ट इंडिया. खालिस्तान वाला जो बोल रहे हैं मान लीजिए कोई, तो हमारे लोग सोचेंगे अरे, और उसका लोकेशन आया होगा, मतलब उसमें लिखा होगा प्रोफाइल में पंजाब में किसी शहर से, जबकि वो है ही नहीं वहाँ पे. ISI का बोट है जो कराची से ट्वीट कर रहा है या लाहौर से ट्वीट कर रहा है. उसी तरीके से कोई होगा पंडित वाला सरनेम लगा रखा होगा शर्मा, वो भी वहीं से ऑपरेट हो रहा है, वो दोनों लड़ रहे होंगे और ये लोग मतलब सोचेंगे कि ये लोग हिंदू ने कमेंट किया है हमारे खिलाफ, वो सिखों के खिलाफ कुछ बोलेगा. दे डोंट हैव टू बी रियल पीपल. इसी तरीके से साउथ इंडिया का है, कोई साउथ साउंडिंग नेम होगा और उससे वो कुछ एंटी इंडिया
में अपना नाम लगा देते, कुछ आदि
कुछ,
दादा
कुछ
दादा
खराब बोल देगा. हाँ. और हमारे मतलब नॉर्थ वाले लोग ये देखो कितने जाहिल लोग हैं और ये सब. तो ये इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग दैट दीज गाइज आर एक्सप्लॉइटिंग
एंड
और हम समझ नहीं पा
रहे एंड दे आर एक्सप्लॉइटिंग इट नाउ, बट दिस एक्सप्लॉयटेशन हैज अ डीपर सीडिंग.
बिल्कुल,
जो सीडिंग थी उसी को वो एक्सप्लॉयट कर.
देखो फोल्ड लाइंस हर सोसाइटी में होती हैं. इट लाइक आपका अप्रोच क्या है, आपका अप्रोच है लड़ने का या आपका अप्रोच है उसको सोल कैसे किया जाए. जो पहले हमारा अप्रोच था जो सनातन धर्म का जिसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं उसका अप्रोच ही है कि हाउ टू यूनाइट एवरीवन इन दिस थ्रेड, सेक्रेट थ्रेड, सेक्रेट ज्योग्राफी, इसको कैसे कर सकते हैं. दिस इज सिंपल थिंग वी हैव फॉरगॉटन कि हम एक दूसरे से और कनेक्टेड कैसे हो सकते हैं
और हम सेपरेट कर रहे हैं अपने आप को. एंड आई थिंक इस सेपरेशन की ना मोटिवेशन भी रही है, अ लॉट ऑफ कंट्रीज आउट देयर बेनिफिट फ्रॉम अ डिवाइडेड भारत इकोनॉमिकली. तो उसमें तो वो इन्वेस्ट करेंगे ही ना, क्योंकि जब तक हम डिवाइडेड रहेंगे, जब तक हम गरीब रहेंगे तभी तक तो हम उनका बीपीओ का सस्ता काम करेंगे, तभी तक तो हम उनके लिए चीप लेबर बनेंगे
यहाँ, तभी तक वो कंट्रोल भी कर सकते
हैं, तभी तक वो कंट्रोल भी कर सकते हैं ना, तभी तक उनकी जो सुप्रीमेसी है वो कंट्रोल मतलब ये रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, तभी तक वो इकोनॉमिकली सुप्रीम रहेंगे, तभी तक उनकी वाहवाही होगी, तभी तक वो मतलब अपना सत्ता रख पाएंगे. उसके बाद तो चेंज हो जाएगी जिस दिन हम एक साथ आएंगे, क्योंकि एकता में तो शक्ति है. एक दिन एक हो गए फिर हमने एक साथ काम करना शुरू कर दिया, फ्री वर्ल्ड
क्या करेगा,
फ्री वर्ल्ड फिर क्या करेगा, किस पे राज करेगा. तो दैट इज द वे डिवाइड एंड रूल, एंड दैट इज इवन हैपनिंग नाउ, देयर यूटिलाइजिंग ऑल आवर फॉल्ट लाइंस टू कम एट अस. तो इसीलिए आई थिंक हमें भी सोचना चाहिए कि हमें बटना चाहिए या हमें एकजुट होना चाहिए. तो एज आई थिंक कॉमन सिटीजन्स कमेंट करने से पहले, बात करने से पहले हमें इंटेंशंस के बारे में सोचना चाहिए कि हम ये कमेंट करके या बात रख के हम कर क्या रहे हैं. क्या हम अपने देश को बांट रहे हैं या हम एक इस देश को हील कर रहे हैं, एक साथ ला रहे हैं. तो आई थिंक वो मैच्योरिटी लेवल भी बहुत ज़रूरी है. एंड आई थिंक हमें ये जानना भी ज़रूरी है, ये जो उदयनिधि स्टालिन हो जो भी हो, वो टेम्परेली पावर में रहने के लिए कुछ भी कहने के लिए तैयार है, कल को वो तो कुछ भी कहने के लिए तैयार है. The politicians of this country, unfortunately, some of them, it has devolved to a place ki raj dharm ya politics aajkal hit ke bare mein kam aur swahit ke bare mein zyada ho gaya hai. To wo to yahi baatein karega na jo usko satta mein rakhega. People speak of separatist thing kyunki unko lagta hai ki hum desh ke pradhanmantri nahi ban payenge to hum apna desh bana lenge aur wahi ke pradhanmantri ban jayenge. To sab apne apne goals ke hisab se apni apni strategy banate hain, apne apne divisive ye banate hain, agendas banate hain. As people I think hame is ट्रैप में नहीं पड़ना चाहिए. हमें अपने संस्कृति के बारे में, हमारे देश के बारे में और हमारी जो पूरी स्ट्रेटजी है इसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि ये चल क्या रहा है. आजकल एक पूरा कांग्रेस का ये चलता है कि वी आर अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. ये तो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है ना कि इट इज अ कमिंग टुगेदर रिपब्लिक.
पहले सब अलग अलग थे, 13 कॉलोनी 14 कॉलोनी थे,
वी आर नॉट अ कमिंग टुगेदर रिपब्लिक. We are a holding together republic. We were together and we are trying to still hold it together. There are two different types of republics coming.
It's a union of India, not union of states.
States, exactly.
मतलब इनको समझ में नहीं आता है. नहीं समझ में आता है उनको, but as I said कि जो fault lines exploit की जा रही हैं, वो they are playing to the tunes of their masters.
Their masters, exactly. एंड आई थिंक इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे बीच में ही ऐसे लोग हैं जो अपनी शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए अपने ही साथियों को बेच खाने के लिए तैयार हैं. देखा जाए तो हम सब भारतीय सभ्यता के लोग हैं, हम सब बाय द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ब्राउन, वी आर ऑल यू नो हिंदू. बाय द एंड ऑफ द डे अगर हमारा जब तक यूटिलाइजेशन है तभी तक वो हमें यूटिलाइज करेंगे, उसके बाद तो उनको भी फेंक डालेंगे. जो ऐसे यूजफुल सिपॉय बनते हैं आज के फ्लैग बेयरर्स ऑफ वेस्टर्न कॉलोनाइजेशन इन मॉडर्न डे, उनको भी तो ये लोग यूज एंड थ्रो ही करेंगे. इनको भी मुझे लगता है सीख लेना चाहिए कि हमें अपनी जो शॉर्ट टर्म ये क्या कहते हैं एडवांटेजेस,
वही है ना, जैसे
जाना नहीं चाहिए.
टर्म यूज होती है ना सोशल मीडिया पे कि जैसे आईएसएस में जब जाते थे यहाँ के लोग, इंडियन मुस्लिम्स एज वेल एज पाकिस्तानी मुस्लिम्स, तो वहाँ पे उनको टॉयलेट क्लीनर्स के रूप में यूज किया जाता था. तो ये जो है सिपोइज ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ये भी दे आर जस्ट टॉयलेट क्लीनर्स. तो वो उनका टॉयलेट क्लीन कर रहे हैं, वो उधर का कर रहे हैं, डिफरेंस इज सेम,
जस्ट द सेम.
तो ये सिचुएशन है अनफॉर्चुनेटली.
दैट इज राइट. एंड आई थिंक इट परकोलेट्स इन अ डिफरेंट वे. पहले वो इसके बारे में लिखते हैं, इफ यू वॉन्ट टू सिंपली अंडरस्टैंड हाउ दिस एंटायर इकोसिस्टम वर्क्स, दे राइट अबाउट इट, एक थ्योरी लिखते हैं, उस थ्योरी के बारे में फिर और बुक्स लिखना चालू कर देते हैं, फिर वो बुक्स को कहानियों में बदलते हैं, उन कहानियों का फिल्में बनाते हैं, ड्रामे बनाते हैं, गाने बनाते हैं, ताकि वो आपकी सबकॉन्शियस में मतलब चुप हो जाए.
द पावर ऑफ कोऑर्डिनेटेड एंड सस्टेन्ड
नैरेटिव्स इज वेरी ह्यूज एंड आई थिंक ऑल्सो कल्चरल अप्रोप्रिएशन इज ऑल्सो द इम्पैक्ट इज वेरी ह्यूज. हम बचपन में ऐसे बहुत गाने सुने होंगे हमने जो हमें बस अच्छा लगता था और उसकी जो मतलब है ना वो सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं हमारे कॉन्शियंस में आ जाता है एंड ना चाहते हुए भी हम इन इन वर्ड्स का इन शब्दों का हो इन रेफरेंसेस का हो इन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का हो हम उनका अनुयाय हमारे जीवन में कर लेते हैं अनफॉर्चुनेटली. तो आई थिंक भारत में आजकल बहुत लोग हैं जो ना जानते हुए भी इस ट्रैप में पड़ जाते हैं बिकॉज द वॉरफेयर इज ऑन अ सबकॉन्शियस लेवल. इट इज़ नॉट जस्ट ऑन अ कॉन्शियस लेवल कि वो आपको अपनी भाषा के तौर पे या आपसे यू नो
इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज 24/7 365 डेज
एंड इट इज सबकॉन्शियस. इट सीप्स इनटू योर सबकॉन्शियस थ्रू कल्चरल क्यूज थ्रू द कलर्स यू सी प्रेडोमिनेंटली थ्रू द advertisements you see predominantly
exploiting through, all the contours of human psychology.
Yes, so na jante hue bhi aap kahin na kahin western propaganda ka ek tool ban jate ho. So true. I think I just try to write about this in the book.
Yeah, fir se dikha deta hu main ek bar cover. Thank you for writing this. I think ye already national bestseller ban chuki
ban
hai
chuka hai.
और आपको बहुत बहुत बधाइयाँ इसके लिए एंड बेस्ट लक फॉर फ्यूचर. जो
you.
भी आप इलेक्शन वहाँ पे लड़े यहाँ पे भी लड़िए आगे चल के और आगे बढ़िए. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड टॉकिंग टू अस. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू.
लाइकवाइज. थैंक यू सो मच.
थैंक यू रश्मि.